روفهی روف نیا.
सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी। सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी में अभी तक आपने सुना कि कैसे हंसती खेलती सुप्रिया घर में डकैती के बाद सहम सी गई थी। उसका मन हल्का करने और वातावरण बदलने के लिए दादू दादी और सुप्रिया उनके गांव के घर में आ गए। गांव के घर के बाहर एक नीम का पेड़ है जिस पर एक काबुली वाला आकर बच्चों को कहानियां सुनाता है। कल की कहानी के बाद काबुली वाला सभी बच्चों से बोल रहा था, पढ़ाई करो बच्चों, उसी से आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, उसी से कुछ अच्छा हो पाएगा। इस बात ने सुप्रिया के दिमाग में काफी गहरा प्रभाव डाला। उसी के बाद तुरंत मम्मी का फोन आ गया और उन्होंने बताया कि दादू दादी और सुप्रिया अब भोपाल वापस आ सकते हैं। आज सुप्रिया को मिक्स फीलिंग आ रही थी। कभी वह खुश होती कि उसे भोपाल जाने मिल रहा है, उसका स्कूल, फ्रेंड्स, उसका घर सब उसका इंतजार कर रहे हैं। कभी वह उदास होती कि अब काबुलीवाला की कहानियां, गांव का घर, उसका प्यारा नीम का पेड़ और गांव के इतने सारे बच्चे उसे बहुत बहुत दिनों तक नहीं मिल पाएंगे। दादाजी तभी मॉर्निंग वॉक करके आए और सुप्रिया को देखकर एक ठंडी सांस लेते हुए बोले, कल से यह ताजी हवा, खुले मैदान, दूर तक दिखता हुआ आसमान कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। कल से मुझे फिर वही भोपाल में कंक्रीट की सड़कों पर वॉकिंग करने जाना पड़ेगा। आंगन में बैठी सुप्रिया को देखकर दादाजी को कुछ याद आया और वह बोले, अरे बेटा सुप्रिया, अब हम भोपाल जा रहे हैं, तुम उस दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर जलेबी पोहा खाते हुए अपने पापा से कुछ बता रही थी, तुम डकैतों के बारे में कुछ जानती हो क्या? क्या बात है, मुझे बताओ बेटा, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? मुझे बताओ, शायद पापा और पुलिस की कुछ हेल्प हो जाए। दादाजी के बहुत पूछने पर सुप्रिया धीमी सी आवाज में बोली, हाँ दादाजी, मैंने उनमें से एक डकैत का मुंह देखा है। मैं जब भी आंख बंद करती हूँ, मेरी आंख के सामने उसका चेहरा आ जाता है। मैं जहां भी उसे देखूं, उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूं। यह तो बहुत बड़ी हेल्प होगी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। आई एम सॉरी, हमें तुम्हारी बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। ओहो, इसीलिए तुम इतने दिन से इतनी ज्यादा परेशान और उदास रहती हो, दादाजी ने सुप्रिया को गले लगाते हुए बोला। दादाजी, जब डकैत अपने भोपाल के घर में थे, उनमें से एक डकैत ने मोबाइल पर बात करने के लिए अपना मास्क उतारा था। उसी समय मैंने उसका चेहरा देखा। डकैत ने मुझे चाकू दिखाकर डराया और बोला कि मैंने अगर किसी को यह बात बताई तो वह मेरी आंखें उसी चाकू से निकाल देगा। आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए इतने दिन तक कुछ बोल नहीं पाई। सुप्रिया ने रोते हुए दादाजी को बताया। कोई बात नहीं, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, तुम घबराओ मत, मैं पापा को फोन करके बता दूंगा। अब चलो कुछ खा लो, तुम्हें भूख नहीं लगी है? अभी तुम्हारा काबुलीवाला आता होगा। सुप्रिया और दादाजी ने जैसे ही ब्रेकफास्ट फिनिश किया, सुप्रिया को नीम के पेड़ के नीचे से काबुलीवाला के डमरू की आवाज सुनाई दी। सुप्रिया जानती थी कि आज काबुलीवाला के साथ उसकी आखिरी कहानी होगी। वह कुछ मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तुरंत दौड़कर नीम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। काबुलीवाला मजे से अपना डमरू बजाता हर रोज की तरह बच्चों को बुला रहा था। पिंकी, शानू, बबली, मीनू, आओ आओ, सारे आओ, और काबुलीवाला से एक नई कहानी सुनते जाओ। ऐसा बोलकर काबुलीवाला ने अपनी नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। राजा भोज ने अपने कदम जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ाए, सिंहासन से निकलकर आई पुतली रूपरेखा राजा भोज के सामने आकर खड़ी हो गई। रूपरेखा बोली, राजा भोज, मैं जानती हूँ आप इस सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, किंतु बैठने के पहले मेरी यह कहानी सुन लीजिए। इतना बोलकर पुतली रूपरेखा ने राजा भोज को कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। यह कहकर काबुलीवाला भी अपनी कहानी आगे बढ़ाता गया। एक रात की बात है, राजा विक्रमादित्य भेष बदलकर राज्य के लोगों का बुरा भला जानने के लिए घूम रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें चार चोर नजर आए। एक चोर कह रहा था, मैं मुहूर्त देखना जानता हूँ, मुहूर्त देखकर निकलने से कभी कोई काम अधूरा नहीं छूटता और मेरी यात्रा कभी खाली नहीं जाती। दूसरा चोर कहने लगा, मैं जानवरों की बोली समझता हूँ, वह कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। उस पर तुरंत तीसरा चोर ने भी अपनी तारीफ करी, मैं जानता हूँ कि मैं जिस मकान में जाता हूँ मुझे वहाँ कोई देख नहीं पाता। चौथा चोर भी अपने बारे में बताने लगा, मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ कि मुझे जो चाहे कोई जितना मारे वह मारते मारते थक जाएगा, लेकिन मैं तब भी नहीं मरूंगा। उनकी बातें सुनकर भेष बदले हुए राजा विक्रमादित्य उनके बीच उत्सुकता में शामिल हो गए। तुम कौन हो और क्या जानते हो? अपने बीच पांचवे साथी को देखकर एक चोर ने पूछा, मैं भी तुम्हारा भाई बंधु हूँ, मैं गड़ा हुआ धन जहाँ है उस स्थान को देखकर पहचान सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम तो काम के आदमी हो, हमें उस जगह ले चलो जहाँ पर धन गड़ा हुआ हो। चोरों ने कहा, राजा उन चोरों को अपने साथ लेकर राजमहल के उस हिस्से में ले आया जहाँ बुरे समय के लिए छोटा सा खजाना छुपा रखा था। पांचवें चोर यानी राजा ने चोरों को धन का स्थान बता दिया। चोरों ने तुरंत उस जगह पर खुदाई करी, वहाँ धन और माल गड़ा हुआ था। प्रसन्नता के साथ सभी चोर इस धन को लेकर वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक धोबी का घर पड़ा। अब चोरों ने सोचा कि इस धोबी के घर को लूटने की तैयारी करी जाए। राजा ने मन ही मन सोचा, वह धन जो मैंने अभी चोरों को बताया वह तो अपना था, जो मैंने चोरों को सौंप दिया। अन्य के धन की चोरी के लिए मैं उनका साथ देकर पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। यह सोचकर चोरों को व्यस्त देखकर राजा विक्रमादित्य उनके बीच से निकलकर अपने महल वापस आ गए। अभी चारों चोर चोरी कर ही रहे थे कि नगर कोतवाल सिपाहियों के साथ पहरा देता हुआ उधर से निकला। चोर चोरी करके निकल नहीं पाए थे कि रंगे हाथों पकड़े गए। प्रातःकाल चारों चोरों को राजा विक्रमादित्य के दरबार में पेश किया गया। उन्होंने जैसे ही राजा को देखा तो उसे देखते ही पहचान गए। उन्हें याद आ गया कि यह तो वही रात वाला हमारा पांचवा नया साथी है जो हमारी मदद कर रहा था। वे सभी भय से थर थर कांपने लगे। राजा के पूछने पर एक चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जान बख्शी जाए तो हम कुछ बताना चाहते हैं राजन। रात आपकी ही शक्ल का एक चोर हमारे बीच हमारा पांचवा साथी बनकर आया था। राजा हंस कर कहने लगे, तुम चारों चोरों की यह सजा है कि जाकर अपने पांचवें साथी को खोज कर मेरे पास लाओ। जब तक वह तुम्हें मिल न जाए तुम इधर आना मत। राजा के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर चारों चोरों को लगा कि जान बचाने का इससे सस्ता काम नहीं हो सकता। चोर उल्टे पैर भागे। राजकोष का सारा धन बरामद हो गया। जाहिर है उसके बाद चोर लौटकर कभी उस राज्य में नहीं आए। पांचवें चोर को वह तलाश कैसे कर पाते? वह जानते थे पांचवा चोर कोई और नहीं स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। यह बात वह राजा के दरबार में जाकर कैसे कह सकते थे? इसीलिए वह राजा विक्रमादित्य का शहर छोड़कर भाग गए और वहां कभी लौटकर नहीं आए। कथा सुनाकर पुतली बोली, इस प्रकार हमारे राजा विक्रमादित्य मनोविनोदी भी थे। यदि तुमने कभी ऐसा विनोद किया है तो इस सिंहासन पर बैठ लो राजा। पुतली के मुख से यह सुनकर राजा भोज तुरंत सिंहासन से पीछे हट गए। आज काबुलीवाला कहानी सुनाकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, देखो बच्चों, सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि अकल से और प्यार से भी काफी सारी मुश्किलों का हल निकल सकता है। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। काबुलीवाला को डमरू बजाने ही नहीं दे रहे थे। काबुलीवाला ने फिर भी अपना डमरू बजाया और वहां से चला गया। सभी बच्चे आपस में राजा विक्रमादित्य की अकलमंदी की तारीफें कर रहे थे। सभी एक दूसरे को अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि उन्होंने कब ऐसी चालाकी और अकलमंदी से किसी मुश्किल का हल ढूंढा है। सुप्रिया मन ही मन कुछ सोचते हुए नीम के पेड़ के चबूतरे से उठी और अपने घर आ गई। घर आते साथ ही दादाजी से बोली, दादाजी पापा को फोन कर दीजिए, वह आज ही हमें भोपाल बुलाने के लिए कार भेज दे प्लीज। मैं डकैतों के बारे में पुलिस को बिल्कुल बताऊंगी। आज सुप्रिया की आवाज में कोई झिझक भय या डर नहीं था। उसने बड़ी दृढ़ता के साथ बोला, अब हमारे भोपाल वापस जाने का समय आ गया है दादाजी।